नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत समावेशी विकास पर केंद्रित भरोसेमंद वैल्यू चेन भागीदार के रूप में देखा जाता है। झारखंड में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 15 नक्सली मारे गए, इनमें 1 करोड़ रुपए के इनाम वाला कुख्यात नक्सली पतिराम मांझी भी शामिल। जम्मू कश्मीर में एक वाहन के खाई में गिरने से सेना के 10 जवानों की मृत्यु हो गई और 11 घायल हुए। सरकार ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के अंतर्गत 4 अतिरिक्त कार्बन गहन क्षेत्रों को शामिल किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था को जोखिम मुक्त करने के लिए भारत यूरोपीय संघ के मजबूत संबंधों का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के समाधान के लिए बोर्ड ऑफ पीस नामक चार्टर का अनावरण किया। और रायन कुगलर के फिल्म सिनर्स को 98वें अकादमी पुरस्कारों में 16 नामांकन के साथ नया कीर्तिमान बनाया। समाचार विस्तार से। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत को भरोसेमंद वैल्यू चेन भागीदार और समावेशी विकास पर केंद्रित देश के रूप में देखा जाता है। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान श्री वैष्णव ने बताया कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के सभी 5 स्तरों पर काम कर रहा है। इनमें AI आर्किटेक्चर, अनुप्रयोग, मॉडल, चिप, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा शामिल है। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले AI इम्पैक्ट समिट पर श्री वैष्णव ने कहा कि AI में अपार क्षमताएं हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। उन्होंने कहा कि नुकसानों को नियंत्रित करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय होने चाहिए। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार द्वारा अनुमोदित 10 सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण संयंत्रों में से 4 संयंत्रों ने हाल के महीनों में प्रायोगिक उत्पादन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इनमें से 1 संयंत्र फरवरी के अंतिम सप्ताह में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर रहा है। श्री वैष्णव ने बताया कि बुलेट ट्रेन परियोजना बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। इसके पहले खंड का निर्माण इस वर्ष दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सूरत में बिलीमोरा तक चलने वाला पहला खंड अगले वर्ष अगस्त में खोला जाएगा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में आज सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। चाईबासा पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई है। एक रिपोर्ट।
मुठभेड़ के दौरान अब तक कुल 15 नक्सलियों के शव मिले हैं, जिनमें 11 की पहचान कर ली गई है। मारे गए नक्सलियों में 1,20,00,000 के इनामी सेंट्रल कमेटी मेंबर अनिल उर्फ पतिराम मांझी, 25,00,000 के इनामी अनमोल उर्फ सुशांत समेत कई एरिया और जोनल कमेटी सदस्य शामिल हैं। पुलिस के अनुसार वर्ष 2022 से अब तक सारंडा क्षेत्र में हुए IED विस्फोट और हिंसक घटनाओं में अनिल के नेतृत्व वाले दस्ता की प्रमुख भूमिका रही है। झारखंड पुलिस ने शेष बचे उग्रवादियों से सरकार की समर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाने की अपील की है। सर्च अभियान अभी भी जारी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिमी सिंहभूम में 15 नक्सलियों को मार गिराए जाने को नक्सल विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण सफलता बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आज सड़क दुर्घटना में 10 जवानों की मृत्यु हो गई और 11 घायल हो गए। सेना का एक ट्रक भदरवाह चंबा अंतर्राज्यीय मार्ग पर स्थित 9,000 फुट ऊंचे खानी टॉप से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया। सेना और पुलिस ने तुरंत संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया। घायल जवानों में से एक भदरवाह उप जिला अस्पताल में निगरानी में है, जबकि 10 जवानों को विशेष उपचार के लिए उधमपुर कमांड अस्पताल ले जाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में इस्पात कारखाने में हुई दुर्घटना में 6 श्रमिकों की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना कारखाने के धूल नियंत्रण कक्ष में विस्फोट के कारण हुई। घायलों को बिलासपुर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जिला प्रशासन ने घटना की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। दुर्घटना के बाद प्रशासन ने इस्पात संयंत्र सील कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त कार्बन गहन क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GII लक्ष्य अधिसूचित किए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि इन क्षेत्रों में कुल 208 संस्थाओं को निर्धारित उत्सर्जन तीव्रता कटौती लक्ष्यों को पूरा करना होगा। इस विस्तार के साथ अब भारत के सबसे अधिक उत्सर्जन गहन उद्योगों में 490 संस्थाएं भारतीय कार्बन बाजार अनुपालन तंत्र के दायरे में आ गई हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ के मजबूत संबंध सुगम आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था को जोखिम मुक्त करेंगे और मजबूत व्यापार, आवागमन और सुरक्षा साझेदारी के माध्यम से वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करेंगे। नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के राजदूतों से बातचीत में डॉ जयशंकर ने उनसे अस्थिरता और अनिश्चितता की मौजूदा वैश्विक स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि मजबूत भारत यूरोपीय संघ संबंध मानव संसाधन विकास, समुद्री डकैती विरोधी अभियान और विकास परियोजनाओं जैसी मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि वे गणतंत्र दिवस समारोह के लिए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन की भारत यात्रा का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वायुसेना इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में रक्षा बलों का नेतृत्व करेगी। नई दिल्ली में आज गणतंत्र दिवस समारोह निदेशालय के एयर कमोडोर इमरान जैदी ने कहा कि वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर हेमंत सिंह कन्यार श्रद्धांजलि समारोह का नेतृत्व करेंगे।
भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दस्ते में 4 अधिकारियों के साथ 144 वायु सैनिक शामिल होंगे। 75 सदस्यीय वायुसेना बैंड का प्रदर्शन भी होगा। बैंड में 66 अग्निवीर शामिल होंगे। 9 महिला अग्निवीर पहली बार प्रस्तुति देंगी।
प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने 50वीं सफल बैठक के बाद एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल को वर्ष 2015 में शुरू किया था। इसके बाद से प्रगति ने प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के माध्यम से प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं और जन शिकायतों के वास्तविक समय में निगरानी तथा समाधान को सक्षम बनाकर शासन व्यवस्था में परिवर्तन किया है। इस विशेष श्रृंखला में आज बात अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के बारे में।
अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण गुजरात के सबसे बड़े महानगर क्षेत्र में सतत शहरी परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह परियोजना 40 किलोमीटर लंबी है, जिसका स्वीकृत लागत 12,924 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की पहली समीक्षा 25 अप्रैल 2018 को प्रगति तंत्र के अंतर्गत की गई थी, जब परियोजना प्रारंभिक चरण में थी और प्रगति लगभग 25% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्ट दिशा निर्देशों से विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत हुआ, जिससे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन तथा बाह्य वित्त पोषण से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी कार्यवाही संभव हो सकी। 23 दिसंबर 2020 को हुई प्रगति समीक्षा तक परियोजना की प्रगति बढ़कर लगभग 62% हो गई, जो बेहतर समन्वय और कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं के समाधान का परिणाम थी। इसके बाद गुजरात सरकार ने भूमि हस्तांतरण और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाई। प्रधानमंत्री द्वारा 30 सितंबर 2022 को परियोजना का उद्घाटन किया गया और अक्टूबर 2022 की शुरुआत में इन्हें आम जनता के लिए खोल दिया गया। शेष खंडों के पूर्ण होने के साथ ही अहमदाबाद मेट्रो का प्रथम चरण का पूरा नेटवर्क अब पूरी तरह से परिचालन में है। आज अहमदाबाद मेट्रो स्वच्छ और सुरक्षित शहरी परिवहन सुविधा प्रदान कर रही है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत का पुनर्निर्माण देश के साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। उत्तराखंड के हरिद्वार में अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में शाह ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और देश के इतिहास को समझते हैं, वे दृढ़ता से मानते हैं कि विश्व की समस्याओं का समाधान भारत की प्राचीन परंपराओं में निहित है।
विश्व भर की समस्याओं का समाधान अगर कहीं एक जगह है तो भारतीय परंपरा में विश्व भर की समस्याओं का समाधान। तो आध्यात्मिक रूप से भारत का पुनर्निर्माण वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, समग्र विश्व के लिए कल्याणकारी होने वाला। और कई सारे अर्थदृष्टाओं ने, स्वामी विवेकानंद जी हो, महर्षि अरविंद हो या पूजनीय पंडित राम शर्मा जी हो, ये सब ने अपनी ओजस्वी वाणी में विश्वास व्यक्त किया है कि जब भारत अपने पूर्ण तेज के साथ जागृत होगा, समग्र विश्व को, समग्र ब्रह्मांड को तेजोमय बनाएगा।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर शांति बोर्ड पहल को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए चार्टर पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने इसे वैश्विक संघर्ष समाधान की दिशा में बड़ा कदम बताया। श्री ट्रंप ने कहा कि एक साल पहले दुनिया सचमुच आग की लपटों में घिरी थी, लेकिन अब कई अच्छी चीजें हो रही हैं जो वैश्विक स्तर पर खतरे कम कर रहे हैं। ऑस्कर पुरस्कार समारोह के 98वें संस्करण के लिए नामांकन घोषित कर दिए गए हैं। रयान कुगलर की सिनर्स ने 16 नामांकनों के साथ ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाते हुए सबसे अधिक नामांकन प्राप्त किए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑल अबाउट एव 1950, टाइटैनिक 1997, अ ला ला लैंड 2016 के नाम था। वन बैटल आफ्टर एनदर 13 नामांकनों के साथ दूसरे स्थान पर है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की झांकी भारत की समृद्ध कहानी कहने की परंपराओं और वेव्स की परिकल्पना प्रदर्शित करेगी।
श्रुति भारत की समृद्ध मौखिक परंपरा का प्रतीक है। इसमें पीपल के पेड़ के नीचे गुरु द्वारा शिष्यों को ज्ञान देते हुए दिखाया गया है। साथ ही ओम की दिव्य ध्वनि और ज्ञान की उत्पत्ति को दर्शाने वाली ध्वनि तरंग के प्रतीक भी शामिल है। कृति लिखित परंपरा के विकास को दर्शाती है। इसमें भगवान गणेश द्वारा महाभारत लिखते हुए दिखाया गया है। साथ ही पांडुलिपियां, प्रदर्शन कलाएं और प्रारंभिक संचार परंपराएं दिखाई गई हैं, जिन्होंने भारत की बौद्धिक विरासत को आकार दिया। दृष्टि भारत में मीडिया के विकास को दर्शाती है, जिसमें प्रिंट, सिनेमा, टेलीविजन और डिजिटल माध्यम शामिल हैं। पुराने कैमरे, फिल्म रील, उपग्रह, समाचार पत्र और बॉक्स ऑफिस के प्रतीक उन कलाकारों और फिल्मकारों को सम्मान देते हैं जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक पहचान बनाई। यह झांकी भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को उसके डिजिटल भविष्य से जोड़ती हुई अतीत से वर्तमान तक की सांस्कृतिक यात्रा और भविष्य की सोच को एक साथ प्रस्तुत करती है। आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा की कमियों को दूर करने के लिए शुरू की गई है। आज बेंगलुरु में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि नई योजना 125 दिन के रोजगार का आश्वासन देती है, जो पहले 100 दिन की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गलत सूचना फैला रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत समावेशी विकास पर केंद्रित भरोसेमंद वैल्यू चेन भागीदार के रूप में देखा जाता है। झारखंड में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 15 नक्सली मारे गए, इनमें 1 करोड़ रुपए के इनाम वाला कुख्यात नक्सली पतिराम मांझी भी शामिल। जम्मू कश्मीर में एक वाहन के खाई में गिरने से सेना के 10 जवानों की मृत्यु हो गई और 11 घायल हुए। सरकार ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के अंतर्गत 4 अतिरिक्त कार्बन गहन क्षेत्रों को शामिल किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था को जोखिम मुक्त करने के लिए भारत यूरोपीय संघ के मजबूत संबंधों का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के समाधान के लिए बोर्ड ऑफ पीस नामक चार्टर का अनावरण किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।